लूका बाब 22। यहूदियों की बगैर खमीर की रोटी की तकरीब यानी फसह की तकरीब करीब आन पहुंची थी। काहिनों के रहनुमा और मुअल्लमीन शरीयत यीशु को कत्ल करने की फिक्र कर रहे थे। वो यीशु को कत्ल करने के लिए मुनासिब मौका तलाश कर रहे थे, जिसके लिए वो लोगों से डरे हुए भी थे। यीशु के 12 रसूलों में यहूदा इस्करियोती एक था। शैतान उसमें दाखिल हो गया था। यहूदा काहिनों के रहनुमा के मुहाफिज चंद सिपाहियों के पास गया और यीशु को पकड़वा देने के बारे में उनसे गुफ्तगू की। वो बहुत खुश हुए। तब उन्होंने यहूदा से वादा किया कि वो यीशु को पकड़वा कर उनके हवाले करेगा तो वो उसे रकम देंगे। यहूदा इस बात पर मुत्तफिक हुए और यीशु को पकड़वाने के लिए मुनासिब मौके की ताक में रहा। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो ये काम ऐसे वक्त में करे कि जबकि लोग जमा ना हों। बगैर खमीर की रोटी की तकरीब का वक्त आया। यहूदियों के लिए फसह की भेड़ों को ज़बह करने का वही दिन था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना से कहा,
जाओ और हमारे लिए फसह के खाने का इंतजाम करो।
पतरस और यूहन्ना ने यीशु से पूछा,
खाना कहाँ तैयार करना चाहिए?
यीशु ने उनसे कहा,
सुनो, तुम शहर में दाखिल होने के बाद तुम एक ऐसे आदमी को देखोगे कि जो पानी से भरा एक घड़ा उठाए हुए जाता होगा, उसी के पीछे चलते रहो। फिर वो एक घर में दाखिल होगा, तुम भी उसके साथ चले जाओ। घर के उस मालिक से कहो कि उस्ताद पूछता है कि वो अपने शागिर्दों के साथ किस कमरा में फसह का खाना खाए। तब घर का मालिक बालाखाना पर एक बड़े कमरा की निशानदेही करेगा और कहेगा कि यह कमरा तो सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, और कहेगा कि फसह का खाना वहां पर तैयार करो।
इसलिए पतरस और यूहन्ना लौट गए। हर बात यीशु के कहने के मुताबिक पेश आई और वो फसह का खाना वहीं पर तैयार किया। फसह की तकरीब के खाने का वक्त आ गया। यीशु और रसूल दस्तरखान के इतराफ खाना खाने के लिए बैठ गए। यीशु ने उनसे कहा,
मैं मरने से पहले फसह का खाना तुम्हारे साथ खाने की बड़ी आरजू रखता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाहत में ये पूरा नहीं होने का तब तक मैं दोबारा फसह का खाना नहीं खाऊंगा।
तब यीशु ने मै का प्याला उठाया और उसके लिए खुदा का शुक्र अदा किया। तब फिर उसने कहा,
इस प्याला को लो और तुम सब आपस में बांट लो,
और कहा कि
खुदा की बादशाहत आने तक मैं कभी दोबारा नहीं पीऊंगा।
तब यीशु ने थोड़ी सी रोटी उठाई, उसने रोटी के लिए खुदा की तारीफ करते हुए उसको तोड़ा और टुकड़ों को रसूलों में बांट दिया। तब उसने कहा,
मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो मेरा बदन है,
और कहा कि
मुझे याद करने के लिए तुम इस तरह करो।
इसी तरीके पर जब खाना खत्म हुआ तो उसने मै का प्याला उठाया और कहा,
खुदा ने अपने बंदों से जो नया अहद किया है ये उसको जाहिर करता है। मैं तुम्हें जो खून दे रहा हूँ इससे नए मुआहदे का आगाज होता है।
यीशु ने कहा,
मुझसे दुश्मनी करने वाला मेरे साथ इसी सप में खाने के लिए बैठा है। इब्न आदम खुदा के मंसूबे के मुताबिक मरेगा, लेकिन अफसोस है उस पर जो हम में है और वो ये काम करेगा।
तब रसूलों में एक दूसरे से बातें होने लगीं कि
हम में से वो कौन है कि जो ये काम करेगा।
तब रसूल आपस में बहस करने लगे कि हम में से कौन ज्यादा मुअज्ज़ज़ और अशरफ है। लेकिन फिर यीशु ने उनसे कहा,
दुनिया का बादशाह अपने लोगों पर हुकूमत करते हैं, और वो शख्स जो दूसरों पर अख्तियार रखते हैं वो उनसे अपने आप को लोगों का मददगार कहलवाते हैं।
और कहा कि
तुम हरगिज ऐसे न बनना, और तुम में जो बड़ा है वो सबसे छोटा बने, और कायदीन को चाहिए कि वो नौकरों की तरह रहें। अहम तरीन शख्स कौन है? क्या वो जो खाने के लिए बैठा है, या वो जो उसकी खिदमत करता है? क्या तुम समझते हो कि वो जो खाना खाने के लिए बैठा है वो बड़ा होता है? लेकिन मैं तो तुम में एक खादिम की तरह हूँ। तुम तो मेरे साथ कई मुश्किलात में रहे हो, और मैं तुम्हें वैसे ही एक हुकूमत दे रहा हूँ جیسے میرے باپ نے حکومت مجھے دی تھی۔ میری بادشاہت میں تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور پیو گے، پھر تم تخت پر بیٹھ کر مطمئن ہو کر اسرائیل کے 12 فرقوں کا فیصلہ کرو گے۔ ایک کسان جس طرح اپنا گیہوں اچھالتا ہے، اسی طرح شیطان نے بھی تمہیں آزمانے کے لیے اجازت لی ہے۔ اے شمعون، اے شمعون!
اور کہا کہ
تیرا ایمان نہ کھونے کے لیے میں نے دعا کی ہے، اور جب تو واپس آئے تو تیرے بھائیوں کی قوت بڑھے۔
اس بات پر پترس نے یسوع سے کہا،
اے خداوند، میں تیرے ساتھ جیل جانے کے لیے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔
اس پر یسوع نے کہا،
اے پترس، کل صبح مرغ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرتے ہوئے کہے گا کہ میں اسے نہیں جانتا۔
تب یسوع نے رسولوں سے پوچھا،
میں تمہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بغیر پیسوں کے، بغیر تھیلی کے اور بغیر جوتوں کے بھیجا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا تمہارے لیے کسی چیز کی کمی ہوئی ہے؟
رسولوں نے جواب دیا،
نہیں۔
یسوع نے ان سے کہا،
لیکن اگر اب تمہارے پاس رقم ہو یا تھیلی ہو، اس کو ساتھ لے جاؤ، اور اگر تمہارے پاس تلوار نہ ہو تو تمہاری پوشاک کو بیچ کر ایک تلوار خرید لو، کیونکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحیفے میں لکھا ہے، مجھ پر یقیناً ہی پورا ہوگا۔ وہ ایک مجرم سمجھا گیا تھا، ہاں میرے بارے میں لکھی گئی یہ بات پوری ہونے کو آ رہی ہے۔
شاگردوں نے کہا،
خداوند، یہاں دیکھو، 2 تلواریں ہیں۔
یسوع نے کہا،
بس اتنا ٹھیک ہے۔
یسوع شہر چھوڑنے کے بعد زیتون کے پہاڑ کو گئے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا،
تم دعا کرو کہ تمہیں اکسایا نہ جائے۔
تب یسوع ان سے تقریباً 50 گز دور چلے گئے اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگے،
اے باپ، اگر تو چاہتا ہے تو ان تکلیفوں کے پیالہ کو مجھ سے دور کر، اور میری مرضی کے بجائے تیری ہی مرضی پوری ہو۔
تب آسمان سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اس فرشتے کو یسوع کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ یسوع کو سخت پریشانی لاحق ہوئی اور وہ دل سوزی سے دعا کرنے لگے، اس کے چہرے کا پسینہ خون کی بڑی بوند کی شکل میں زمین پر گر رہا تھا۔ جب یسوع نے دعا ختم کی تو وہ اپنے شاگردوں کے پاس گئے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا،
تم کیوں سو رہے ہو؟ بیدار ہو جاؤ، دعا کرو کہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔
یسوع جب باتیں کر رہا تھا تو لوگوں کی ایک بھیڑ وہاں آئی، ان 12 رسولوں میں سے ایک بھیڑ کا پیشوا تھا، وہی یہودا تھا۔ وہ یسوع کا بوسہ لینے قریب پہنچا، یسوع نے اس سے پوچھا،
اے یہودا، کیا بوسہ لینے کے بعد تو ابن آدم کو پکڑوا دے گا؟
یسوع کے شاگرد بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر پیش آنے والے واقعات کو وہ دیکھ رہے تھے۔ شاگردوں نے یسوع سے پوچھا،
اے خداوند، کیا ہم تلواروں کو استعمال کریں؟
شاگردوں میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر حملہ کر کے داہنا کان کاٹ ڈالا۔ یسوع نے اس سے کہا،
رک جا،
اور ادھر نوکر کے کان کو چھوا اور وہ اچھا ہو گیا۔ یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر کاہنوں کے رہنما بزرگ، یہودی قائدین اور یہودی سپاہی بھی آئے ہوئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا،
تلواروں کو اور لاٹھیوں کو لیے ہوئے یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مجرم ہوں؟ ہر روز میں تمہارے ساتھ ہیکل میں تھا، تم نے مجھے وہاں پر کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے کہ یہ تمہارا وقت اور تاریکی کا اختیار ہے۔
انہوں نے یسوع کو گرفتار کیے اور اعلی کاہن کے گھر میں لائے۔ پترس ان کے پیچھے ہو لیا لیکن یسوع کے قریب نہ آیا۔ سپاہی درمیانی آنگن میں آگ سلگا کر سب جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پترس بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پترس کو وہاں بیٹھے ہوئے ایک خادمہ نے دیکھ لیا، اور آگ کی روشنی میں اس نے پترس کی شناخت کر لی۔ پترس کی صورت کو بغور دیکھا اور کہا،
یہ تو وہی آدمی ہے جو یسوع کے ساتھ تھا۔
لیکن پترس نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس نے اس سے کہا،
اے عورت، میں تو اسے جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔
کچھ دیر بعد ایک اور آدمی پترس کو دیکھ کر کہا،
तू भी उन लोगों में से एक है।
पतरस ने इस बात का इनकार करते हुए कहा,
नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ।
तकरीबन एक घंटे बाद एक दूसरे आदमी ने पुख्ता यकीन के साथ कहा,
यकीनन यह आदमी उनके साथ था,
और कहा कि
यह गलील का रहने वाला है।
तब पतरस ने कहा,
तू जो कह रहा है मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ।
पतरस अभी ये बातें कर ही रहा था कि मुर्ग ने बांग दी। उस वक्त खुदावंद ने पीछे मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी,
मुर्ग बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा।
तब पतरस बाहर आया और जारो कतार रोने लगा। चंद लोगों ने यीशु को पकड़ लिया था, वो यीशु के चेहरे पर नकाब डाल दिए और उसको मारने लगे और कहने लगे कि
तू तो नबी है, बता कि तुझे किसने मारा।
उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से यीशु की बेइज्जती की। दूसरे दिन सुबह बड़े लोग के कायदीन और काहिनों के रहनुमा, मुअल्लिमीन शरीयत सब एक साथ मिलकर आए और वो यीशु को अदालत में ले गए। उन्होंने कहा,
अगर तू मसीह है तो हमसे कह।
तो यीशु ने उनसे कहा,
अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं मसीह हूँ तो तुम मेरा यकीन न करोगे, अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम उसका जवाब भी न दोगे। लेकिन आज से इब्न आदम खुदा के तख्त की दाहिनी जानिब बैठा रहेगा।
उन सबों ने पूछा,
तो क्या तू खुदा का बेटा है।
यीशु ने उनसे कहा,
मेरे होने की बात को तुम खुद ही कहते हो।
तब उन्होंने कहा,
हमें मजीद और क्या गवाही चाहिए, क्योंकि हम सुन चुके हैं कि खुद उसने क्या कहा है।